28 अगस्त दिन मंगलवार दिन भर मैं हूँ रेहान फजल। देश भर में माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे।
मम्मा ने उनसे पूछा कि एक कॉल कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद तो उन्होंने लाइक फोन पे और जो भी डॉक्यूमेंट था हार्ड ड्राइव पे वो सारे निकाल दिए।
बताएंगे कुल्लू की कहानी, जहां महिलाओं को अभी भी मासिक धर्म के दौरान सोना पड़ता है गौशाला में।
जब हम नए नए आए एक दो महीने तो मतलब बहुत मुश्किल हुआ, नींद ही नहीं आती थी, पूरा दिन ऐसे रात को ऐसे बैठना।
एशियाई खेलों में भारत को एक और स्वर्ण पदक, चलेंगे सीधे जकार्ता, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में इस साल की शुरुआत में हुई हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस ने आज सुबह कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे हैं। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि दिल्ली में मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा, सिविल राइट्स वकील सुधा भारद्वाज, हैदराबाद के कवि बी राव, मुंबई में वी गोंजाल्विस और रांची में स्टेन स्वामी के घरों पर पुलिस ने छापे मारे हैं। आरोप है कि इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के कारण ही भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कार्रवाई की आलोचना की है और कहा है कि सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सोवियत यूनियन के दौर के बाद अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। रूसी रक्षा मंत्री ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब पश्चिमी देश रूस की आक्रामकता को लेकर पहले से ही चिंतित हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि वोस्टक 2018 के नाम से होने वाले इस सैन्य अभ्यास में लगभग 36,000 टैंक और 1,000 से ज्यादा विमान हिस्सा लेंगे। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, इस सैन्य अभ्यास में केंद्रीय और पूर्वी सैन्य जिलों के ट्रेनिंग ग्राउंड से लगभग 3,00,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। इस सैन्य अभ्यास में प्रशांत और उत्तरी बेड़ों के अलावा पैरा ट्रूपर भी शामिल होंगे। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई शोइगु के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने देश के आर्थिक संकट के लिए अंदरूनी लड़ाई और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान में महंगाई बढ़ती जा रही है और उसकी मुद्रा रियाल में भी नाटकीय रूप से गिरावट आई है। इसकी वजह से सुधारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी पर कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में राष्ट्रपति रूहानी को संसद ने पहली बार तलब भी किया। उन्होंने कहा कि समस्याएं तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु करार खत्म कर दिया और दोबारा प्रतिबंध लगा दिए। ईरान की संसद में राष्ट्रपति रूहानी ने कहा, ईरान विरोधी मुट्ठी भर लोग हमारे खिलाफ साजिश के लिए व्हाइट हाउस में जमा हुए हैं, लेकिन हम उन्हें हमारे खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। ईरान की संसद में जो आज हुआ उसके बाद व्हाइट हाउस खुश नहीं होगा। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया के मीडिया से खबरें मिल रही हैं कि संघर्ष विराम पर सहमति होने के बाद राजधानी त्रिपोली से दक्षिण में एक उपनगर में विरोधी लड़ाकों के बीच झड़पें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसमें 5 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। लीबिया की मौजूदा सरकार को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन हासिल है। लीबिया में साल 2011 में कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाया गया था, तभी से लीबिया में 2 विरोधी सरकारें और बड़ी संख्या में लड़ाके सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने यमन में सभी पक्षों पर आरोप लगाया है कि वो अभी भी युद्ध अपराध में शामिल हैं। अपनी पहली रिपोर्ट में जांचकर्ताओं ने कहा है कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन और हूथी विद्रोहियों ने आम लोगों को लड़ाई से बचाने के लिए बहुत अधिक कोशिशें नहीं की गई हैं। इस रिपोर्ट को अगले महीने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। पुलिस ने आज देश के अलग अलग शहरों में जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया। कहा जा रहा है कि ये छापे महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुए कार्यक्रम और उसके बाद हुई हिंसा से संबंधित है। भीमा कोरेगांव में जनवरी 2018 में हुई हिंसा में एक युवक की मौत और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
80 साल के स्टेन स्वामी के घर पर पुणे पुलिस सुबह के 6 बजे ही जा पहुंची और कुछ घंटों की तलाशी के बाद रांची में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के लैपटॉप, मोबाइल, पत्थरगड़ी आंदोलन से संबंधित एक प्रेसलीज वगैरह को जब्त कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने स्टेन स्वामी को गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह का छापा दिल्ली में मानवाधिकार कार्यकर्ता और मशहूर पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादकीय सलाहकार गौतम नौलखा और हरियाणा के बाद में वकील सुधा भारद्वाज के घर पर भी मारा गया। सुधा भारद्वाज की बेटी मायशा मेहरा ने बीबीसी को फोन पर बताया कि सुबह 6 बजे उनकी और उनकी मां की नींद पुलिस के घर के कॉल बेल बजाने से ही खुली।
मम्मा ने उनसे पूछा कि एक कॉल कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद तो उन्होंने लाइक फोन पे और जो भी डॉक्यूमेंट था हार्ड ड्राइव पे वो सारे निकाल दिए और मम्मा का और मेरा आईडी पासवर्ड वगैरह पूछा गया हमें। मम्मा का ट्विटर और जीमेल सारा उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। एक आए हुए थे जो कि हैकर ही थे आई गेस, लाइक पुलिस में से नहीं थे।
पुलिस ने कहा है कि गौतम नौलखा और सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में छापे के बाद वर्नन गोंजाल्विस और अरुण परेरा को भी पुलिस पुणे ले जा रही है। वर्नन शिक्षक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अरुण परेरा मुंबई हाईकोर्ट में वकालत करने के साथ सामाजिक कामों में भी लगे रहे हैं। वर्नन गोंजाल्विस के बेटे सुनील अब्राहम गोंजाल्विस ने बताया,
जिस भी लिटरेचर में माओ या नक्सल ऐसा नाम था जो, और ऐसी किताबें जो आपको कहीं पर भी मिल जाए, उन्होंने सारा कुछ ले लिया। एक मेरा हिस्ट्री का किताब था बोल्शेविक रेवोल्यूशन के ऊपर, वो भी उन्होंने ले लिया और उस सारे को उन्होंने एविडेंस के रूप में अपने पास रखा हुआ है।
हैदराबाद में छापे के बाद 78 साल के तेलुगु लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता वरवरा राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वरवरा राव के दामाद एन वेणुगोपाल का कहना था कि पुलिस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित साजिश से जोड़ रही है। वो कह रहे थे कि ये जून में दर्ज उस केस से संबंधित है जिसमें कहा गया था कि वरवरा राव मोदी की हत्या की साजिश में शामिल थे और वो फंड का जुगाड़ कर रहे थे। ये थे वरवरा राव के दामाद एन वेणुगोपाल के शब्द। जून में पुलिस ने दावा किया था कि माओवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद दिल्ली, मुंबई और नागपुर से कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। आप जानते ही हैं कि 1 जनवरी को पुणे के पास भीमा कोरेगांव में दलितों के कार्यक्रम के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी। इस सिलसिले में हिंदुत्ववादी संगठन के शिवाजी भिड़े और मिलिंद एक बोटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। भिड़े को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि एक बोटे जमानत पर बाहर हैं। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के कार्यकर्ता हरीश धवन का कहना है कि सरकार सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ योजना के तहत काम कर रही है।
मुझे सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि देश के जो भी वरिष्ठ किस्म के जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों के ऊपर एक साथ एक कॉन्सेंट्रेटेड एक हमला किया जा रहा है। मुझे लगता है कोई सरकार की किस तरीके की क्या तैयारी हो रही है कि देश में कोई भी लोग जनवादी अधिकारों की बात या लोगों के संघर्षों की और उनके अधिकारों के हनन की बात ही ना करें। ये तो बिल्कुल चौंका देने वाली बात है।
हरीश दफन का कहना था कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की बात भी किसी ठोस आधार पर नहीं की गई थी और आज के छापे और गिरफ्तारियों को लेकर भी पुलिस ने किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
एमके स्टालिन ने आज डीएमके के अध्यक्ष पद को औपचारिक रूप से संभाल लिया। पद संभालते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर चीज को धार्मिक रंग देने के लिए जबरदस्त हमला बोला। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आखिरकार एमके स्टालिन देश की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन ही गए उनके दिवंगत पिता और नेता मुत्तुवेल करुणानिधि करीब 50 साल तक डीएमके के नेता रहे थे। शायद इसीलिए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन पार्टी के अध्यक्ष बन पाएंगे। लेकिन अध्यक्ष बनने के फौरन बाद स्टालिन ने भाषण में दो प्रमुख उसूलों को दोहराते हुए बीजेपी की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा, मेरा कभी भी सपना था कि हम उन लोगों का विरोध करें जो हर चीज को धार्मिक रंग देते हैं। आइए हम साथ मिलकर उन ताकतों को अधिकार से निकालें जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर हमला कर रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतें साहित्य, कला, शिक्षा और धार्मिक मूल्यों पर हमला कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार को सबक सिखाएंगे। ये थे एमके स्टालिन के शब्द। स्टालिन ने पार्टी की जनरल काउंसिल के 2800 सदस्यों को ये भी कहा कि उनका दूसरा लक्ष्य होगा अन्ना डीएमके की सरकार को सत्ता से निकालना। तो इस भाषण को राजनीतिक विश्लेषक किस तरह देखते हैं? वरिष्ठ विश्लेषक एस मुरारी का मानना है कि स्टालिन का संदेश पार्टी के काडर को संबोधित था, जिससे वो बहुत ही खुश होंगे। उन्होंने कहा, स्टालिन ने मोदी पर निशाना इसलिए लगाया है क्योंकि उनको पता है कि जब दो प्रमुख आइकन यानी करुणानिधि और जयललिता नहीं है तो बीजेपी तमिलनाडु में अपना रास्ता बनाने की कोशिश जरूर करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि डीएमके अपने बुनियादी सिद्धांतों यानी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर कायम रहेगा। जाहिर है कि पार्टी का काडर इससे खुश होगा। ये थे एस मुरारी के शब्द। आज के भाषण से यह स्पष्ट है कि स्टालिन का फोकस 2019 के लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु विधानसभा के 2021 के चुनाव पर है। अभी वक्त ही बताएगा कि वो क्या सचमुच तलपति के खिताब के लायक हैं या नहीं। तमिल में तलपति का मतलब है सरदार या कमांडर। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
भारत प्रशासित कश्मीर के नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही कहा है कि वो हर उस नेता या नागरिक से बात करेंगे जो भारतीय संविधान के अंतर्गत बात करने के लिए तैयार हो। पिछले 10 साल तक राज्य के गवर्नर रह चुके नरेंद्र नाथ वोहरा का कार्यकाल खत्म होते ही बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार जून में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद गिर गई थी और तब से राज्य में राज्यपाल शासन लगा हुआ है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पिछले 30 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत प्रशासित कश्मीर में एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत की राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले सत्यपाल मलिक ने पिछले सप्ताह पदभार ग्रहण करते ही आम जनता के लिए हर जिले में शिकायती सेल्स बनाने का आदेश दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो कश्मीर में शांति बहाली के लिए हर उस नागरिक या नेता से बात करने को तैयार हैं जो भारतीय संविधान के भीतर समस्याओं का समाधान चाहता हो। नाजुक स्थिति के बीच नए गवर्नर की नियुक्ति कश्मीर में अक्सर विवादित रही है। 1990 में चरमपंथी आंदोलन के बीच जब गवर्नर जगमोहन को नियुक्त किया गया तो फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और स्थिति बिगड़ गई। हालांकि पिछले वर्षों में कई वार्ताकारों को नियुक्त किया गया है लेकिन स्थिति नहीं बदली। आम लोग कहते हैं इन्हें कोई बड़ी आशा नहीं है।
बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस और बहुत सारे डेलीगेशंस कश्मीर आए, जब भी हालत खराब होती तो तभी हिंदुस्तान को कश्मीर याद आता है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ बेहतर
अब अगर इन्होंने कहा है कि ये बातचीत एक इनिशिएटिव खुद से लेंगे, मुझे लगता है एक मौका देना चाहिए। अगर उससे कोई एक जम्मू टूट सकता है, अगर ये बर्फ पिघल सकती है।
सूत्रों ने बताया कि सत्यपाल मलिक भारत सरकार के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा के साथ मिलकर बातचीत का माहौल तैयार कर रहे हैं ताकि पंचायती चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण पैदा किया जाए, परंतु अलगाववादियों और चरमपंथी गुटों ने पहले ही बातचीत को रद्द कर दिया है और चुनाव के बॉयकॉट की अपील की है। इस बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि कश्मीर में प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन करने के बावजूद एनएन वोहरा को महज इसलिए अचानक हटाया गया क्योंकि वो भारत विरोधी प्रदर्शनों के विरुद्ध कठिन सैन्य नीति के खिलाफ थे और उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि राज्य में चुनाव होने और नई सरकार बनने तक धारा 35A के मामले को एक तरफ रखा जाए। जनता के कुछ वर्गों को लगता है कि सत्यपाल मलिक की नियुक्ति शांति बहाली और बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ही हुई है। विश्लेषक और स्तंभकार सलीम बेग।
आपको याद होगा हाल ही में जो मैं आज़ादी की तकरीब में वजीर आज़म ने ये ऐलान किया था और इस इरादे का इजहार किया था कि वो कश्मीरियों को गले लगाना चाह रहे हैं। मैं इस तकरीर को उसी सिलसिले की एक कड़ी समझ रहा हूँ।
विश्लेषकों का ये भी कहना है कि भले ही सत्यपाल मलिक बीजेपी के साथ हों, इनके सभी राजनीतिक गुटों के साथ अच्छे संबंध हैं और वो कश्मीर में शांति बहाली के लिए इन संबंधों का उपयोग कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इनके पुराने मित्र हैं और महबूबा मुफ्ती के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ वो वीपी सिंह सरकार के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। कई राजनीतिक वर्गों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक की सफलता इस बात पर निर्भर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आगे कैसे संबंध रहेंगे। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग के कमांडेंट जनरल और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्यमंत्री को भेजा गया एक पत्र सुर्खियों में आ गया है। अधिकारी ने इस पत्र में रिटायरमेंट के बाद उन्हें ऐसा कोई पद देने का आग्रह किया है ताकि वो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार कर सके। उनके इस पत्र को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मन मिश्र की रिपोर्ट।
रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्यमंत्री से चुनाव प्रचार करने के लिए उपयुक्त पद की मांग करने वाले आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सूर्यकुमार शुक्ल बीजेपी सरकार और उसकी विचारधारा के प्रति आस्था जताने के लिए पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। करीब 6 महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के साथ अयोध्या में जल्द राम मंदिर बनवाने की शपथ ले रहे थे। 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सूर्यकुमार का नाम पिछले 4 साल में कई बार डीजीपी पद के लिए चर्चा में आया, लेकिन वो डीजीपी नहीं बन पाए। सूर्य कुमार की इन दोनों गतिविधियों को पद पाने के संदर्भ में ही देखा जा रहा है, पहले डीजीपी का और अब रिटायरमेंट के बाद बेहतर समायोजन का। जानकारों के मुताबिक पत्र लिखकर बेहतर समायोजन की अपील करने में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन वर्दी पहनकर शपथ लेना ठीक नहीं है। यूपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अफसर और लेखक डॉक्टर वीएन राय कहते हैं,
असल में जो अभी कहा इसका, इसमें तो कोई वायलेशन नहीं है भाई, कोई भी अफसर कह सकता है कि हमको यहाँ पोस्ट कर दिया। पहले वाला तो जरूर बहुत सीरियस मामला था, लेकिन अब ये सरकार तो उनके खिलाफ कार्रवाई मुझे लगता नहीं करेगी और न किया कोई कार्रवाई।
आईपीएस डॉक्टर सूर्य कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में रिटायरमेंट के बाद उन्हें देने के लिए 4 नौकरियों की सूची दी है। इस पत्र के मुताबिक उनका सबसे पसंदीदा पद राज्य योजना आयोग में उपाध्यक्ष का पद है। 23 जुलाई को एक आधिकारिक लेटर हेड पर लिखा गया यह पत्र लीक हो गया। पत्र में डॉक्टर सूर्य कुमार ने यह भी लिखा है कि वो साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अधिकारियों, खासकर पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कथित तौर पर खुश करने के लिए ऐसे काम किए जो कि आमतौर पर वर्दीधारी वरिष्ठ अफसरों से अपेक्षा नहीं की जाती। इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों का मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के पैर छूना और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करना या फिर जयकारे लगवाना शामिल है। डॉक्टर वीएन राय कहते हैं कि सरकारी तौर पर तो इन सब की मनाही नहीं है, लेकिन नैतिक तौर पर आम जनता इनसे ये उम्मीद नहीं करती।
बड़ी दुखद है, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी वर्दी पहन करके पैर छूने की तस्वीरें आती रही है, अब थोड़ा बढ़ गई होंगी। असल में इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वो है नहीं, पैर छूना कोई कई गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल में मनाही तो है नहीं, तो ये बहुत सारी चीजें ट्रेडिशन पर और आपके अंदर आत्मसम्मान का कितना मादा है, इन सब पे निर्भर करती रही है।
वहीं सूर्य कुमार के इस पत्र पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसने इस तरह की घटनाओं पर पहले भी सवाल उठाए थे, लेकिन इनका संज्ञान नहीं लिया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं,
ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग केंद्र में मोदी जी ने कर रखा है। बहुत सारे ऐसे मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हैं या मीडिया प्रतिष्ठान में जिनको आरएसएस के लोगों ने अपने अपने लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पे, खासतौर से महत्वपूर्ण जगहों पे बिठा रखा है। ये अलग बात है कि इससे जो संघीय व्यवस्था को जो चोट पहुंच रही है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो चोट पहुंच रही है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था को चोट पहुंच रही है, इसके लिए ये सारे तत्व जिम्मेदार है।
जहां तक डॉक्टर सूर्य कुमार का सवाल है तो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार से भी उनके रिश्ते बेहतर बताए जाते हैं, लेकिन साल 2014 से ही यूपी के डीजीपी पद की रेस में शामिल डॉक्टर सूर्य कुमार आखिरकार डीजीपी इन वेटिंग ही रह गए और अब 31 अगस्त को अपनी सरकारी सेवा पूरी कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर सूर्य कुमार के इस पत्र पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और बीजेपी नेता कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। वहीं आईपीएस एसोसिएशन ने भी फिलहाल इस पर मौन ही साधे रखा है। समीर आत्मज मिश्र,
بی بی سی لکھنؤ.
کلو منالی وہ جگہ ہے جس کا نام سنتے ہی آنکھوں کے سامنے بادلوں سے ڈھکے پہاڑ نظر آ جاتے ہیں. یہاں دنیا بھر سے پریٹک آتے ہیں. لیکن کلو کی ایک دوسری تصویر بھی ہے جو مہیلاؤں کے ماسک دھرم یعنی ماہواری سے جڑی ہے. کلو کے پہاڑوں میں بسے گاؤں میں بہت سی عورتیں ماہواری کے کچھ دنوں میں گوشالہ میں سوتی ہیں. عورتوں کو پریوار سے الگ گوبر کے ساتھ سونا پسند نہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں. سنیے بی بی سی سنواداتا سمرن پریت کور کی رپورٹ.
کلو منالی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے پریٹک آتے ہیں، لیکن یہاں کی ایک دوسری تصویر بھی ہے. کلو کے پہاڑوں پر جو گاؤں بسے ہیں وہاں کئی مہیلائیں ایسی پرتھا کا پالن کرتی ہیں جس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں. ہماچل کے کلو کے جانا گاؤں کی بملا دیوی ایک بچے کی ماں ہے اور ماسک دھرم کے وقت وہ اپنے گھر کے بھیتر قدم تک نہیں رکھ سکتی. بچے اور پتی سے الگ گھر کے نیچے گوشالہ میں سوتی ہیں.
سردی میں اندر سوتے ہیں گوشالہ میں، گرمی میں باہر چار پائی کے اوپر. رسوئی میں نہیں جا سکتے ہم، اندر نہیں جا سکتے، کوئی مندر میں نہیں جا سکتے. تین دن میں گندا مند ہے نا، تین دن کے بعد نہیں، بدبو ہوتی ہے نا گائے کے گونتر سے اور گوبر سے.
یہاں کے لوگوں کا وشواس ہے کہ ماسک دھرم کے دوران اگر عورت گھر میں آ گئی تو گھر اپوتر ہو سکتا ہے، دیوتا غصہ ہو سکتے ہیں. کلو کے دھرموٹ گاؤں میں نئی دلہن کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے. کچھ مہینے پہلے پریتا دیوی بھی شادی کر کے اس گاؤں میں آئی تھی. بی اے پاس پریتا کے لیے اس پرتھا کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا. وہ کہتی ہیں کہ یہ پرانے ریتی رواج ہیں جن کا پالن کرنا ہوگا.
جب ہم نئے نئے آئے ایک دو مہینے تو مطلب بہت مشکل ہوا، نیند ہی نہیں آتی تھی پورا پورا دن، ایسے رات کو ایسے بیٹھنا، نہ دیوتا کی ریتی ہو ان کے، ایسے اندر جاؤ گے تو دیوتا منا ناراض ہو جائیں گے.
سرکار ناری گریما کاریکرم کے ذریعے جاگروکتا لانے کی کوشش کر رہی ہے. دراصل گوشالہ میں رہنے سے کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھانے کا پریاس ہو رہا ہے. کلو ضلع کے ڈپٹی کمشنر یونس کا کہنا ہے کہ یہ ایک سال کا پائلٹ پروجیکٹ ہے. کیونکہ اس پرتھا سے کہیں نہ کہیں لوگوں کی آستھا بھی جڑی ہوئی ہے تو انہوں نے بہت سے لوگوں سے بات کی. کچھ پجاریوں اور پروہتوں کا سمرتھن بھی انہیں ملا.
جو ڈگنیفائڈ لائف ہے وہ سب کا رائٹ ہے.
سمان سے جینے کا ادھیکار سب کو ہے. جب ہم کچھ پروہت اور پجاریوں سے ملے تو انہوں نے اس پروگرام کے لیے پوزیٹو ریسپانس دیا.
ہم اس گاؤں میں پہنچے جہاں اس جاگرکتا کاریکرم کا آغاز جنوری 2018 میں ہوا تھا. بے شک ابھی بہت کچھ بدلنا باقی ہے، لیکن اس بارے میں بات چیت ہونے لگی ہے اور اب مرد بھی اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں. جانا گاؤں کے پجاری جگت رام نے کہا کہ اب گاؤں میں جاگرکتا ہے.
ان کے لیے کیا، بھگوان کے لیے تو کوئی بھی کیسا بھی آیا آدمی آ جائے، ان کا تو سب برابر ہے جی.
ان سب گاؤں میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی طرح کا بدلاؤ نہیں چاہتے.
وہ بدلاؤ نہیں چاہتے ہیں، ہمارا دیوتا ہمارے کو ناراض ہوتا ہے.
لوگوں کی سوچ بدلنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن شروعات ہو چکی ہے.
اچھا بیٹی ہوگی تو میری، میں تو بالکل نہیں، اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، اندر ہی رکھوں گی.
لوگوں کا ماننا ہے کہ نئی پیڑھی اپنے ساتھ بہت سے بدلاؤ لے کر آئے گی. سمرن پریت کور، پی بی سی، کلو.
جکارتا ایشیائی کھیلوں سے خبر ہے کہ بھارت کے منجیت سنگھ نے پرشوں کی 800 میٹر دوڑ میں بھارت کے لیے 9واں سوان پدک جیتا ہے. اسی اسپردھا میں جانسن رجت پدک جیت گئے ہیں اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو بھارت کے لیے رجت جیت کر آئی ہیں. آئیے سیدھے چلتے ہیں جکارتا کھیل پترکار امن پریت سنگھ کے پاس. امن پریت، سب سے پہلے ورنن کریے 800 میٹر دوڑ کا جہاں بھارت 1-2 دونوں پدک بھارت کو ملے.
ریحان، آج کا دن یادگار بنایا منجیت سنگھ نے. وہ اس لیے یادگار بنایا کیونکہ ایشین گیم کے بلڈ اپ میں پدک کے دعوے داروں میں ان کا کہیں نام ہی نہیں تھا. جنسن جانسن کی ہی سبھی بات کر رہے تھے کہ وہی میڈل جیتیں گے، لیکن بہت اچھا دوڑے اور انت میں فوٹو فنش میں انہوں نے جنسن جانسن کو ہرایا. اور 1951 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ بھارت کے دونوں کھلاڑیوں نے پہلا اور دوسرا سن حاصل کیا ہے 800 میٹر کی پرشوں کی دوڑ میں. 1951 میں رنجیت سنگھ اور کلبن سنگھ، ان دونوں نے 1 اور 2 کا فنش بھارت کے لیے لیا تھا.
ایتھلیٹکس میں اور بھی پدک آئے ہیں بھارت کے لیے.
जी मिक्स्ड रिले, ये पहली बार एशियाई खेलों में मिक्स्ड रिले का इवेंट आज हुआ और इसमें आज भारत को सिल्वर मेडल मिला। जीत भारत की हो सकती थी, जिस तरह से राजीव अरोकिया ने इतनी बड़ी बढ़त बना करके दिया, लेकिन पुवम्मा एमआर पुवम्मा जो है वो उस बढ़त का फायदा नहीं उठा पाई और जब तक की बैटिंग उन्होंने पास किया हिमा दास के पास और फिर हिमा दास से मोहम्मद अनस के पास, काफी बड़ी बढ़त ले चुके थे बहरीन के एथलीट। अल्टीमेटली हमें सेकंड स्थान से ही संतोष करना पड़ेगा।
बैडमिंटन में उम्मीद की जा रही थी कि पीवी संधु को चमत्कार करें, लेकिन विश्व की नंबर एक खिलाड़ी के सामने नहीं चल पाई उनकी, उनको रजत से ही संतोष करना पड़ा।
जी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक तरफा मुकाबला था, लेकिन जितनी फाइट होनी चाहिए थी वो फाइट नहीं हो पाई। चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी इतनी सशक्त थी कि उनका डिफेंस ब्रीच करना बहुत मुश्किल हो रहा था सिंधु के लिए, और ये उनकी इस साल की तीसरी बड़ी फाइनल की हार है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो फाइनल हारी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी फाइनल हारी और अब यहाँ पर भी, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक कोई भी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी इस पदक को नहीं ले पाई है, पहली बार है कोई सिल्वर मेडल आया है बैडमिंटन में,
और न सिर्फ सिल्वर बल्कि ब्रॉन्ज भी। साइना नेहवाल को कांस्य पदक पहले ही मिल चुका था। थोड़ी बात करें अमनप्रीत तीरंदाजी में, जहां भारत को आज दो रजत पदक मिले, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला था दक्षिण कोरिया से, बताइए कैसा रहा मुकाबला?
बहुत रोमांचक था, लेकिन इस हार की टीस रहेगी क्योंकि मिलीमीटर के फासले से ये रजत और गोल्ड का फैसला हुआ है। आज दोनों ही टीमें हमारी कोरिया से हारी, मुकाबले की कोई कमी नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि कंपटीशन आप लड़ें, हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी फाइट होनी चाहिए। तो अच्छी फाइट दी कोरिया की टीम को, कोरिया सबसे प्रबल दावेदार सबसे सशक्त टीम है दुनिया में, इसलिए थोड़ी टीस है लेकिन कुछ कर नहीं सकते।
ये बताइए आपका क्या अंदाजा है, कितने स्वर्ण पदक लेकर लौटेगी भारत की टीम? 9 तो आ चुके हैं
रेहान, पिछली बार भारत के 11 पदक थे गोल्ड, इस बार ऑलरेडी 9 हो चुके हैं। अभी हॉकी में दोनों ही टीमें हमारी पुरुषों की और महिलाओं की प्रबल दावेदार रहेंगी, जिस तरीके से उन्होंने पूल मैचेस में अपने प्रतिद्वंदियों को बुरी तरह से हराया है, मुझे नहीं लगता कि भारत की दोनों ही टीमों को कोई रोक सकेगा।
तो ये माना जाए कि कम से कम 11 स्वर्ण पदक जरूर भारत वापस लेकर लौटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमनप्रीत आपका जकार्ता से। कल से न्यूयॉर्क में दुनिया की चौथी बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन टेनिस शुरू हुई है। सूर्यांशी पांडे नजर डाल रही हैं वहां हुए मैचों पर।
आपको लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां पर टेनिस में खेला जा रहा है यूएस ओपन, और आज यूएस ओपन का दूसरा दिन रहा जिसके अंदर राफेल नडाल और डेविड फेरर आपस में भिड़े और स्पेन के इन दोनों खिलाड़ियों में से जीत हुई राफेल नडाल की, तो वहीं ऑस्ट्रियन खिलाड़ी डोमिनिक थीम का मुकाबला हुआ बोस्निया के खिलाड़ी मिर्जा बासिक के साथ, और इस मुकाबले में डोमिनिक थीम ने मिर्जा को 6-3, 6-1, 6-4 से हरा दिया। तो वहीं उआन मार्टिन डेल पोर्टो का मुकाबला हुआ अमेरिका के खिलाड़ी डोनल्ड यंग के साथ, और इस मुकाबले में उआन मार्टिन डेल पोर्टो ने 6-0, 6-3, 6-4 से डोनल्ड यंग पर फतह हासिल की। वहीं विमेन सिंगल्स की अगर बात करें तो वहां पर सेरेना विलियम्स का आज मुकाबला था पोलिश की खिलाड़ी मागदा लेनेटे के साथ, और सेरेना विलियम्स ने मागदा को 6-4, 6-0 से हरा दिया। तो ये तो हुई उन मुकाबलों की बात जो अब तक हो चुके हैं, हालांकि अभी भी दूसरे दिन के मुकाबले जारी हैं।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में इस साल की शुरुआत में हुई हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस ने आज कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कार्रवाई की आलोचना की है और कहा है कि सरकार को अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने देश के आर्थिक संकट के लिए अंदरूनी लड़ाई और अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने यमन में सभी पक्षों पर आरोप लगाया है कि वो अभी भी युद्ध अपराध में शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।